أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ لیکچر نمبر 30 ہم پڑھ رہے ہیں شعور اور علم لدنی اس میں ہم نے شعور تو کم پڑھا ہے علم لدنی کی بات پڑھی کہ کس طرح وہ علم حصولی اور علم حضوری کی حدیں بھی متعین کرتا ہے اور ان کو برج بھی کرتا ہے اصل میں یہ ڈائریکٹ انسپائریشنز کو یا انفارمیشن کو ریسیو کرنے کے پروسیس کا نام ہے علم لدنی اور یہ بتایا گیا اس میں جو ہم نے اب تک پڑھا کہ کائنات جو ہے یہ چار دائروں میں متحرک ہے اور یہ سائملٹینیس ہے ان چار دائروں کے یا چار زاویوں کے نام بتائے گئے راہ روح رویا اور رویت یہ اصل میں وہی چار چیزیں ہیں جن کو وہمہ خیال تصور اور احساس کہا جاتا ہے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ سارے کا سارا نظام در حقیقت وہمے کو احساس کے درجے تک لانے کا اور اس کو آنے دینے کا نام ہے اور محسوس کرنا ہے کہ کس طرح اللہ کی یہ ساری اب اس میں پھر آگے بتایا گیا کہ ادراک کیا چیز ہے اور شعور کیا چیز ہے تو یہ جو پہلا دائرہ لاشعور کا ہے وہ لاشعور کہا گیا پھر اس کو ادراک کہا گیا یعنی کہ خیال کی سطح جو ہے یہ ادراک ہے پھر تیسرا دائرہ واشگاف لکھا ہوا ہے کہ یہ تصور ہے اور پھر چوتھا دائرہ جو ہے وہ اصل میں شے ہے یا آخری سطح ہے یہاں سے پھر چیزیں واپس جاتی ہیں اور یہ سارا نظام حرکت پہ بیسڈ ہے حرکت کی قسم بتائی گئی کہ یہ گردش کر رہا ہے گردشی نظام ہے یہاں سرکولیشن چل رہی ہے روٹیشن چل رہی ہے یہ جو اس کا محوری گردش ہے اپنے گرد گھومنا ہر چیز کا اپنے گرد گھوم رہی ہے ذات جو ہے وہ اپنے گرد گھوم رہی ہے اور اس کے گھومنے سے یہ آگے بڑھ رہی ہے اس کو طولانی حرکت کہا گیا تو یہ طولانی حرکت کو ہم سپیس کہتے ہیں اور محوری گردش کو زمانیت کہتے ہیں اور ٹائم جو ہے یہ اصل میں یہ وقفہ ہے جو دونوں قسم کی گردشوں میں پایا جاتا ہے اس آج ہم پیج پڑھ رہے ہیں جی 260 اس میں کل ہم نے جو لاسٹ جملہ پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ وہمہ خیال اور تصور سے گزر کر آدمی محسوساتی حالت میں داخل ہوتا ہے اب چونکہ محسوسات کی مرکزیت عالم ناسوت ہے اور عالم ناسوت مادی زندگی ہے اور ایسی مادی زندگی جو ٹھوس ہے اور عناصر کا مجموعہ ہے اگر ہماری توجہ ہمارا دھیان مادیت سے ہٹ کر واپس تصور اور تصور سے خیال اور خیال سے وہمے کی طرف سفر کرنا سیکھ لے دیکھے نا وہمے سے خیال خیال سے تصور تصور سے احساس یہ بن رہا ہے یہ آٹومیٹک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے توجہ کو صرف اپنے محسوسات میں لانا ہے محسوسات سے اوپر تصور میں جانا ہے پھر تصور سے اوپر خیال کی سطح اور خیال سے اوپر پھر وہمے کی سطح اور اس سے پھر اوپر اللہ کے ذہن میں داخلے کے درجہ آ جائے گا یہ ہے سارا نظام روحانیت یہ ہے وہ تعلیم و تربیت جو بیسیکلی یہ چار درجوں کو واضح کر رہی ہے ان چار اوباد ان چار زاویوں کو واشگاف کر رہی ہے لیکن واشگاف کر بھی دیا لیکن آپ کے تجربے میں نہیں آئی بات اور اگر آئی تو ادھوری آئی یا ٹیڑھی آئی تو सब गड़बड़ हो जाती है। इसको सीधा रखने के लिए पीरो मुर्शिद की निगरानी और बहुत जरूरी है, वरना इंसान एहसासात में भटकता है, तसव्वुरात में गलत तस्वीरें बना बैठता है, वरना ख्यालात में गलत चीज़ें शामिल कर बैठता है, और जो फिर आगे अब्दुल आबाद तक उसके लिए तकालीफ का और मसाइल का सबब बनती है। तो अब इस बात को वाजे करने के लिए ये जो आज का उन्वान है तासुबात और मुफक्किरीन, तासुब का लफ्ज असब से है। तासुब प्रेजिडिस को कहते हैं, बायस होने को कहते हैं, किसी सिमत तवज्जो या रुझान या मिलान का ज्यादा होना तासुब कहलाता है। असब से ही लफ्ज आसाब है, गौर करें जरा। तो गोया कोई चीज अगर इस दर्जे हमारे हवास पे तारी हो कि हमारे आसाब पे असर अंदाज हो, तो हम कहते हैं ये बंदा तासुब का शिकार है। अब आप गौर करें कि हमारे यहाँ हर किस्म के लोग, मतलब पंजाबियों में अपने तासुबात हैं, पठानों में अपने तासुबात हैं, अरबियों में अपने हैं, अमरीकन्स में अपने हैं, मैक्सिकन्स में अपने हैं, ऑस्ट्रेलिया के जिप्सीज जो हैं उनमें अपने तासुबात पाए जाते हैं। ये तासुबात असब यानी ऐसा निज़ाम फिक्र या ऐसी सोच जो हमारे आसाब तक उतर जाए, उसको कहते हैं तासुब। ये तासुबात, देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ, पठानों की मिसाल, वो पश्तो में बात करना पसंद करते हैं। ये तासुब है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं पश्तो के अलावा कोई जबान सुनते, साफ कह देते हैं कि पख्तो के खबर अकवा, यानी पश्तो में बात करो। अच्छा भला समझ रहे हैं, लेकिन तासुब क्या है कि जी ये उर्दू क्यों बोल रहा है। गौर करें, यहां से बात अब फैलाते जाए पूरी दुनिया में, ये तासुबात हर दर्जे पे हर सतह पे हमारी फिक्र में नजर आते हैं। तो अब बात हो रही है कि ये हमारे मुफक्करीन जो हैं, जो फिक्र करने, मुफक्कर फिक्र करने वाले लोग जो हैं, वो भी इन्हीं तासुबात का शिकार है। तो तासुबात और मुफक्करीन, ठीक है जी, ये बात हो रही है। अब इसको कैसे वाजे किया और क्या उस पर तबसरा है वो सुनिए कि आलम नासूत, ये जो हमारी मादी जिंदगी है, ये अनासर की तख्लीक है। यहां पे मादियत का गलबा है, अनासर यानी के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से आगे मिक्सचर्स और फिर आगे सारी ये चीजें जितने भी हमारे मादी अजसाम है वो बनते हैं। तो आलम नासूत जो है ये असल में अनासर की तख्लीक है। तो अनासर की तख्लीक क्या चीज है? ये दर हकीकत फर्द का चौथा शऊर है, यानी बिल्कुल निचले दर्जे का, जिसे रोयत भी कहा, जिसे शऊर चहारम भी कहा, जिसे नहर तजहीर भी कहा। इस शऊर का इदराक, यानी इस दर्जे के शऊर का, शऊर की वजह से हासिल होने वाला इदराक, ये सतही होता है। यानी इस दर्जे पे जो हमें ख्यालात आते हैं वो सतही नौयत के होते हैं। ये इसमें कहा कि इस शऊर का इदराक सतही होता है। इस शऊर का इदराक, यानी इदराक का मैंने अभी अर्ज किया कि ये असल में ख्याल को कहते हैं। तो इस दर्जे के शऊर का जो ख्याल होगा वो सतही होगा, इसका ठहराव और ठोसपन बहुत कम वक्फे पर मुश्तमिल है। अब देखे ना, मादी चीजों की लाइफ है, पहाड़ की उम्र एक उम्र है, फर्ज करें 30,000 साल है, 50,000 साल है, लेकिन है तो उम्र ना, खत्म तो होना है उसने। आप लोहे को बड़ा पायदार मानते हैं, और करें तो वो कुछ अरसे बाद रंग आलूद होके, भुरभुरा होके सब मट्टी हो जाता है। यानी यहां पे जो भी चीज है उसका ठोसपना, उसमें ठोसपन और ठहराओ यानी उसका यहाँ पे रुकना, ये कम वक्फे पर है, कम वक्फा, वक्फा इस टाइम को कहा गया, ये उसकी लाइफ की ड्यूरेशन का नाम है वक्फा, क्योंकि उसका ठोसपन बहुत कम वक्फे पर मुश्तमिल है। इसलिए ये शऊर हवास के एतबार से ज्यादा नाकिस है, यानी ये चौथे दर्जे का शऊर जो है, ये क्लास फोर जो है, इस दर्जे का शऊर बहुत ही नाकाबले एतबार है। क्यों? क्योंकि ये नाकिस है, नाकिस का मतलब नुक्स रखता है, इसमें इसमें नकायस है, नाकिस होने का मतलब कि ये प्रॉपरली परफेक्टेड नहीं है। ठोसपन ज्यादा होने की बिना पर इस शऊर में मुसलसल खिलाव वाकया होता रहता है। ठोसपना किसे कहते हैं? हम ठोस चीज को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन रूहानी बंदा यूं देखता है कि जो चीज जितनी ज्यादा ठोस होती है उसका खिलाव बहुत ज्यादा होता है। अब आप और हमें समझ नहीं आती कि लोहा जो है इंतहाई ठोस चीज है, और रूहानी बंदा देख रहा है कि इसके अंदर खिलाव ज्यादा है, और करें, ये सारा निजाम फिक्र रास्त तर्ज फिक्र की वजह से उल्टा दिखता है। अब जमीर, हजूर कलंदर बाब औलिया फरमाते हैं कि जमीर नूरे बातिन है, जमीर नूरे बातिन है, तीन लफ्ज हैं, जमीर नूरे बातिन, बातिन कहते हैं अंदर की दुनिया, फिक्री दुनिया, नूर कहते हैं ख्याल को, तो जमीर क्या हुआ? अंदर के असली ख्यालात जो हैं, जो ख्याल की असल शक्ल है, उसी का नाम जमीर है। जमीर या नूरे बातिन से इस्तफादा करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जरिए शरीयतें नाफिज की हैं। ये शरीयत जो है ये असल में हमें तरीका बताती है कि किस तरह से हम अपने जमीर से यानी अपने बातिन के नूर से इस्तफादा कर सकें। अब हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात या शरीयत तो तकवीन दोनों पे गौर फिक्र के बाद ये नतीजा अखज होता है कि नौ इंसान की तखलीक का अजमाली पहलू ये, खलासा ये है कि अल्लाह को यकता और एक माना जाए। अब गौर करें कि अल्लाह को एक मानने में किसका भला है, अल्लाह का या मखलूक का? अगर अल्लाह को आप यकता मानते हैं, एक मानते हैं, तो उसके एक मानने से हम सबकी सोचों का जाविया और पैटर्न एक जैसा हो जाएगा, तो मखलूकात के दरमियान, खास तौर पे हजरत इंसान, इनके माबैन ताल्लुक और ज़हनी हम आहंगी ज्यादा होगी कम होगी? जाहिर है ज्यादा हो जाएगी। उसका फायदा किसको होगा? जाहिर है जो मान रहा है उसी को होगा। ये इसरार अंबिया कराम और आखिरी नबी सैयदना हजूर अलैहिस्सलाम पर वही के जरिए मुनकशिफ हुए, ये इसरार जो हैं यानी ये बातें जो हैं, ये अंबिया कराम पे भी और हजूर अलैहिस्सलाम पे भी वही के जरिए उनका इंकशाफ हुआ या उनको बताया गया। ठीक है, क्योंकि अंबिया को ये कश्फ यानी ये जानकारी, कश्फ मैंने खुलना, यानी ये बात उन पे कैसे खुली? वही के जरिए। इसलिए उनके फरमुदात में कयास को दखल नहीं होता, यानी वो कयास की बात नहीं करते, अंदाजों की बात नहीं करते, क्योंकि अंदाजों की बात नहीं करते इसलिए वही के जेरे असर गुफ्तगू कर रहे हैं, लिहाजा वो जो भी कहते हैं वो मबनी बर हकीकत होता है। इसलिए उनके फरमुदात में कयास को दखल नहीं होता। इसके बरक्स अंबिया अलैहिस्सलाम के न मानने वाले फिरके अंबिया कराम की तालीमात को बिगाड़ने वाले फिरके भी इसी में शामिल हो गए, क्योंकि नहीं मान रहे तभी तो उसमें बिगाड़ पैदा किया उन्होंने या तब्दीली कर दी। वो ना मानने वाले फिरके तौहीद को अपने कयास में तलाश करते हैं। अब वो तौहीद को कयासी अंदाज में समझते हैं, अपने अंदाजों से समझते हैं। वो किसी एक ताकत की हुक्मरानी तस्लीम करने के लिए कयास से रहनुमाई चाहते हैं। अंबिया को न मानने वाले फिरके हमेशा तौहीद को कयास में तलाश करते रहे। ये माजी के सारे फिरके, सारे मजाहिब जो बिगड़े, जिन बिगाड़ का शिकार हुए, उसकी वजह बताई जा रही है कि वो तौहीद को अपने कयास में तलाश करते हैं। उनके कयास ने गलत रहनुमाई करके तौहीद को गैर तौहीदी नजरियात बनाकर पेश किया। यानी उनके कयास ने क्या कारनामा किया, उनकी गलत रहनुमाई की। रहनुमाई गलत हुई तो तौहीद गैर तौहीदी नजरियात पे मुंतज हुई। और ये नजरियात, अब इनका नुकसान क्या होता है, कहीं ना कहीं दूसरे फिरकों से मुतसादम होते रहे। यानी क्योंकि वो मबनी बर हकीकत नहीं होते, लिहाजा वो दूसरी गैर हकीकी नजरियात से, ख्यालात से, अफकार से टकरा जाते हैं, मुतसादम होते हैं, यानी तसादम झगड़ा होता है उनका। अब ये कयास चूंकि मफरूजा या फिक्शन होता है, लिहाजा उसका पेश करदा नजरिया किसी दूसरे नजरिए का चंद कदम तो साथ दे सकता है, लेकिन बिलाखिर नाकाम हो जाता है। जबकि अंबियाए कराम का तौहीद का नजरिया कयास पर मबनी नहीं होता। जब हम नौ इंसानी का तस्करा करते हैं और नौ इंसानी की फलाह बहबूद चाहते हैं, तो हमें लाजमन इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि नौ इंसानी एक कुंबा है, इस कुंबे का एक सरपरस्त है, और वो ऐसा सरपरस्त है जिसकी सरपरस्ती में शक की गुंजाइश नहीं है। अब इस नजरिए पर नौ इंसानी को इकट्ठा करने के लिए एक मकतबा फिकर पर मुज्तमा होना या जमा होना जरूरी है। ये वो नुक्ता है, वो नुक्ता फिकर ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह नौ इंसानी का सरपरस्त है। इब्तदाए आफरीनश से हजूर अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम मबूस हुए, उन सब ने तौहीद ही का तज़करा किया। किसी नबी की तालीम एक दूसरे से मुतसादम नहीं है, हर नबी की तालीमात आपस में हमाहंग हैं। दर्जों का फर्क जरूर हो सकता है, दर्जों का फर्क हो सकता है और है, लेकिन जैसे देखे ना, हजरत मूसा ने जिस दर्जे की तालीमात दी, हजरत ईसा ने उससे बढ़कर बताया, फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इन सबसे ज्यादा बेहतर और बढ़कर मुकम्मल करके चीज को दिखा दिया। तो दर्जों का फर्क है, लेकिन बात एक ही है। तो अगर नौ इंसानी एक मरकज पर जमा होकर फलाह चाहती है, तो उसे अंबिया कराम की बताई हुई तौहीद पर अमल करना होगा। अब आप गौर करें, वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीयन वला तफर्रकु, क्या कहा जा रहा है? वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीयन, सब जमा होकर अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो। अब ये वातसम का मतलब हिफाजत करो, हमने कहा पकड़े रखो। जमीयन मिलकर, वला तफर्रकु आपस में फिरका बंदी मत करो। अब आप गौर करें कि ये किस दर्जे पे गड़बड़ हो गई कि अब कुरान हकीम की एक आयत है, कुलू लिन नासे हुस्ना, तीन लफ्ज हैं, कुलू लिन नासे हुस्ना। हमने आज तक कभी इनको डिसाइफर नहीं किया, इसका तर्जमा क्या किया गया, लोगों से अच्छी बात कहो, ये तर्जमा है। ये तर्जमा मिलता है हमें तराजम में, कुरान हकीम के तराजम जो तफासीर में भी इसी का जिक्र है कि अच्छी बात की घड़वंत करते रहो, अच्छी बातें घड़ते रहो। ये क्या बात हुई? अब कहा क्या गया, कूलू कहो, लिन नासे, लिन नासे लोगों के बारे में, लोगों के लिए, जैसे है ना लिल्ला है माफिल समावाते, अल्लाह के लिए, तो यहाँ पे लिन्नास का तर्जमा अल्लाह लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे हम, लोगों को क्यों कर रहे हैं। हुस्ना यानी के अच्छा, कुलू लिन्नास हुस्ना, लोगों को अच्छी बात नहीं कहो, लोगों के बारे में अच्छा कहो, लोगों के लिए अच्छा कहो। अब तीसरी बात सुने जरा, अल्लाह फरमा रहा लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बड़े अच्छे कवाम से बनाया। मुझे बताइए कि मुझे अगर किसी इंसान में कोई बुराई दिख रही है तो मैं अल्लाह के अहसन तकवीम पे शक कर रहा हूं, मैं अल्लाह की बनाई हुई तखलीक का नेगेटिव पहलू क्यों देख रहा हूं। कसूर किसका है? उसका है जिसने नेगेटिव को अपनाया, बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, उसकी नेगेटिविटी के साथ चिमट जाऊं या मैं उसकी नेगेटिविटी को इग्नोर करके अल्लाह के एहसन हो एहसन तकवीम यानी उसकी पॉजिटिविटी को उभारने की कोशिश करूं। गौर करें हम क्या कर रहे हैं, हमें हर बंदा अपने अलावा हर बंदा बुरा दिख रहा है, इसलिए मना है। नहीं भाई, अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह का वो कुंभे का एक फर्द है, लिहाजा इसीलिए मना करते हैं भाई, भाइयों को नहीं लड़ना चाहिए आपस में, बहन भाइयों को नहीं फसाद नहीं करना चाहिए, माँ बाप दुखते हैं, माँ बाप को तकलीफ होती है, साहिब औलाद हैं हम सब माशाल्लाह, साहिब औलाद बंदों को ये जुमला समझ आ रहा है कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप पे क्या बीतती है, ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता। तो अगर ये बात हम तीन लफ्जों में समझ लें कि भाई अल्लाह की तखलीक है, अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया, मैं क्यों बुरा देख रहा हूं, मैं उसकी अच्छाई को क्यों नहीं उभार रहा, ये है हमारे, जब तासुबात खत्म होंगे तो हमारी फिक्र इस तरह दुरुस्त होती चली जाएगी। ये मैं बीच में इजाफी बोल गया, माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात की वजाहत के लिए मैंने जरूरी समझा कि आपसे ये कुरान की तीन आयात पे जरा तबसरा अर्ज कर दूं कि देखिए हमारा जहन अंबिया कराम वही के जरिए की रोशनी में कैसा बनाना चाहते हैं। बहरहाल जी आगे पढ़ते हैं, तारीख बताती है कि अंबिया कराम की तौहीद के नजरिए के अलावा आज तक जितने निजाम हाय हिकमत बनाए गए, जितने निजाम हाय हिकमत बनाए गए वो तमाम अपने मानने वालों के साथ मिट गए या आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम पुराने निजाम हाय फिक्र या तो फना हो चुके हैं या रद्दो बदल के साथ फना के रास्ते पर सरगर्म अमल, यानी वो फना के रास्ते पर चल रहे हैं, मिट रहे हैं, अगरचे उन निजाम हाय फिक्र के मानने वालों की कोशिशें यही हैं कि तमाम नौ इंसानी के लिए रोशनी बन सकें। तारीख शाहिद है कि कयास पर मुश्तमिल सारे निजाम नाकाम हुए और नाकाम होते रहेंगे, ये इलाही कानून है। अब आप गौर करें, ये अभी रिसेंटली यानी कि आज से ये 150 साल के अरसे में कितने निजाम आए फिक्र हमारे सामने आए, कहीं सोशलिज्म तो कहीं कम्युनिज्म, तो कहाँ है ये सरमायादाराना निजाम और ये सारे निजाम जो हैं ये उभरते हैं फिर मिट जाते हैं, ठीक है ना जी। ये जितने निजाम हाय फिक्र हैं ये रफ्ता रफ्ता खत्म हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये जुमला बहुत ही तवज्जो चाहता है, ये कैसी अक्कासी कर रहा है, आज की नस्लें गुज़िश्ता नस्लों से कहीं ज्यादा मायूस हैं और आइंदा नस्लें और भी ज्यादा मायूस होंगी। एक वक्त आएगा कि नौ इंसानी को किसी न किसी वक्त उस नुक्ता तौहीद की तरफ लौटना पड़ेगा जिस नुक्ता तौहीद को अंबिया अलैहिस्सलाम ने मुतारिफ कराया। ये बनी नौ आदम का अल्टीमेट अंजाम ये कि अगर तो ये नुक्ता तौहीद पे वापस आ गए तो बचत है। ये बात कौन कह रहा है? ये हजूर कलंदर बाब मौलिया कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ने के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम पाक में ये बात फरमा दी है कि अगर तुम नुक्ता तौहीद पे आ जाओगे तो तुम भी बच जाओगे, तुम्हारी आइंदा सारी जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया में भी और दुनिया के बाद की जिंदगी भी। वरना आप दुनिया में भी गलत समझे बैठे रहे तो जाहिर है उस गलत समझने के असरात आपको अब्दुल आबाद तक भुगतने। हजूर कलंदर बाब औलिया मौजूदा दौर के मुफक्किरीन को नसीहत करते हैं कि अगर वो नौ इंसानी की फलाह बहबूद चाहते हैं तो इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है कि कयास से हटकर उस नुक्ता फिकर को समझा जाए जो नुक्ता फिकर वही के जरिए मुनकशिफ हुआ। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कौमों में जिंदगी की तर्जें मुख्तलिफ हैं। अब ये जरा इस नुक्ते को समझ लें कि ये यूनिटी ऑफ थॉट में और ये जाहरी शक्लो शुबाहत में यकसानियत में कितना फर्क है। उस फर्क को वाज़े किया जा रहा है कि हमें यूनिटी ऑफ थॉट चाहिए ये जाहरी यकसानियत का प्रचार करने की कोशिश गलत हो जाती है, इससे निजाम टूटते हैं। कैसे? कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कौमों में जिंदगी की तर्जें मुख्तलिफ हैं तो लिबास और जिस्मानी वज़ाइफ जुदा जाना है सबके लिबास। अब देखें ना, वहां टेंड्रा में रहने वाले, आर्टिक पे रहने वाले, एटलांटिस के पार रहने वाले, अब ये लोग जो हैं ये किस तरह से वो धोती पहन ले? जाहिर है वहां समूर चाहिए, वहां पे उन्हें रीछ की खाल का लिबास चाहिए सर्दी से बचने के लिए, तो उनके फिर जिस्मानी सारे अमाल जो हैं वो जुदा गाना है क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। अब सहरा में रहने वाले लोग और तरह पहनेंगे कपड़े। तो हम इसरार करें कि नहीं जी सारे ही शलवारें पहने और टखनों से ऊपर रखें तो ये गलत हो गया। तो ये बात फरमाई जा रही है कि ये बात किसी तरह मुमकिन नहीं है कि तमाम नौ इंसानी का जिस्मानी वजीफा एक हो सके। तो हम जब जिस्मानी वजीफे से हटकर दाखिल यानी इनर में देखते हैं तो हमें एक ही बात नजर आती है कि जिस्मानी वजायफ अलग अलग होने के बावजूद नौ इंसानी का हर फर्द रूहानी वजायफ में बाहम इश्तराक रखता है। ये यानी रूहानी वजायफ में इश्तराक। अब रूहानी वजायफ क्या है? यानी रूह के आमाल। रूह के आमाल क्या है? गौर व फिक्र, फिक्र फिर तफक्कुर से जाहिर है ख्याल और तसव्वुर और एहसास, ये सारा निजाम एक होना चाहिए। नौ इंसानी का हर फर्द रूहानी वजायफ में बाहम इश्तराक रखता है और बाहम इश्तराक ये है कि मखलूक की जरूरियात पूरी करने वाला एक अल्लाह, एक ही हस्ती है जिसने तमाम मखलूक को संभाला हुआ है। नौ इंसानी की जितनी तरक्कियां हैं, जितने अलूम के मदारज हैं, उन सब का ताल्लुक किसी एक जात से है। यानी हम जो भी कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली तो अल्लाह ही से जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि अल्लाह ने हमारे वजूद को मौजूद किया तो उसी ने वो सारा निजाम मरहमत फरमाया। कोई इल्म उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकता, इल्म ही नहीं बन सकता जब तक कोई जात उन अलूम को इंसानी दिमाग पर वारिद ना करे यानी इंस्पायर ना करे। अगर इंस्पायरेशन नहीं आती तो कोई साइंसदान को ईजाद कैसे कर सकता है अगर उसको ख्याल ही नहीं आया, तो वो कैसे बना सकता है कोई चीज। अब अगर मोबाइल बनाने वाले को मोबाइल का ख्याल ना आता तो वो कैसे बना लेता, लेकिन ख्याल आया तो उसने बनाया ना। तो ये कोई तरक्की मुमकिन ही नहीं है जब तक कि उस दुनिया में, इस दुनिया में किसी शय के अंदर तफक्कुर ना किया जाए। कोई शय मौजूद होगी तो तरक्की होगी ना, मौजूद नहीं होगी तो तरक्की कैसी। नौ इंसानी मौजूद होगी तो इर्तका होगा, नौ इंसानी मौजूद ही नहीं तो इर्तका कैसा होगा। नौ इंसानी के दिमाग में कुछ करने, कुछ बनाने का ख्याल वारिद ना हो तो वो कुछ नहीं बना सकती। ये है वो बाहमी रब जो रूहानी एतबार है। रूहानी एतबार से तमाम नौ में और तमाम अफराद में हम वक्त मुतहर्रक है और इसका मखजन तौहीद के अलावा कुछ नहीं है। बस ध्यान को इतर रखें, ये नहीं कि आप तरक्की ना करें या ईजादात ना करें। दुनिया के मुफक्किरीन को चाहिए कि दुनिया में राइज उन वज़ाइफ की गलत ताबीरों को दुरुस्त करें और अक्वाम आलम को वजीफा रूहानी के एक ही दायरे में इकट्ठा करने की हमागीर कोशिश करें। हमागीर, हमा कहते हैं सबके लिए, हमागीर ऐसी जो सबके लिए हो। ये रूहानी दायरा महज कुरान का पेश करदा तौहीद का है। ये रूहानी दायरा महज कुरान की पेश करदा तौहीद है। एक वक्त आएगा कि कौम मुस्तकबिल के खौफनाक तसादम, चाहे वो मुआशी हो या नजरियाती, नौ इंसानी को मजबूर करेंगे कि वो बड़ी से बड़ी कीमत लगाकर अपनी बका तलाश करे। और बका के जराए कुरानी तौहीद के सिवा किसी निजाम हिकमत में नहीं है। दुनिया के मुफक्किरीन पर लाजिम है कि वो खुद को तासुबात से आजाद करके कुरान पाक की बयान करदा तौहीद को अपने ऊपर और पूरी नौ इंसानी पर जारी और सारी कर दें। यानी तासुबात और मुफक्किरीन के उन्वान से आपने देखा कि कितनी बसीरत अफरोज बातें। और क्रक्स क्या है कि भाई कयास से बाज आ जाओ और हकीकत शनासी के लिए अपने जमीर की बात को समझना सीख लो और रूहानी वजायफ की यकसानियत पे गौर करें। जिस्मानी वजायफ एक नहीं होते, ना हो सकते, ये इसका लुबे लुबाब या खलासा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। ठीक हो गया जी? चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी और अपना बहुत ख्याल रखें। और इन बातों पे जो हजूर मुर्शिद करीम के अल्फाज में हमने पढ़ी, इन पे अमल की जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का करम, आपने पसंद किया, आपका शुक्रिया, आपके पसंद करने का शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जजाक अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जी, बहुत खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।